السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ سب لوگ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفلا زدنا علما. الحمد لله میں بھی ٹھیک. خیر مبارک آپ سب کو بھی. عید مبارک. اوکے, گرامر کا جو ٹیسٹ تھا وہ کیسا لگا؟ آسان تھا, مشکل تھا؟ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو؟ کچھ مشکل ہوئی اس میں؟ آپ لوگوں کو پتا چلے گا. اور غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے, کیونکہ غلطی نہ ہو تو پھر سیکھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو گرامر تو ایسی چیز ہے جو بے انتہا غلطیوں کے بعد پھر آتی ہے. تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہے, انشاءاللہ اچھا ہوا ہوگا سب کا. اوکے, ہم اب شروع کرتے ہیں اپنا جو گرامر کا لیسن ہے. اس میں ہم لوگ جیسے مرکبات میں تھے, ہم لوگ مرکبات ہم نے شروع کیے تھے. پہلے ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھا, جس میں جو ہمارا مرکب ناقص کے انڈر آتا ہے, اور اس میں ہمارے پاس صفہ موصوف ہوتی ہے جس کو ہم جن سے ہمارا یہ بنتا ہے مرکب توصیفی. پھر اس کے بعد ہمارا آیا تھا مرکب اشاری, دوسرا ہمارا جو مرکب ناقص تھا. اور مرکب اشاری میں ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ کوئی بھی اسم ہوتا ہے یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کریں. تو یہ مرکب اشاری بھی ہم کمپلیٹ کر چکے تھے. پھر ہمارا تھرڈ مرکب تھا مرکب اضافی. اور جو مرکب اضافی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے, یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. اس میں بھی ہمارے دو ہی کہہ سکتے ہیں آپ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, مضاف مضاف الیہ. پھر ہم نے ان کے رولز وغیرہ بھی پڑھے تھے, اور کہ مضاف کی کیا شروط ہے اور مضاف الیہ کی کیا شروط ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اسماء دیکھے تھے جن کو کہ اسماء خمسہ کہا جاتا ہے, ان کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا. اور پھر ہم نے جو پیچیدہ مرکب اضافی تھے وہ بھی بنانے سیکھے تھے. پیچیدہ مرکب اضافی یعنی جس میں ہمارے پاس دو اسم سے زیادہ اسماء ہوں, اور ان کو ہم کس طریقے کے ساتھ بنائیں گے. جیسے حامد کے گھر کا دروازہ, تو اس میں ہمارے پاس تین اسماء ہیں جن کے اندر تعلق پایا جاتا ہے, پھر اس کو ہم نے دیکھا تھا. تو اس کے بعد اب ہم جس ٹاپک پہ تھے, جس کو ہم نے شروع کیا تھا, وہ ہمارا ٹاپک تھا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں جیسے میں نے آپ کو دو ٹیبلز بھی سینڈ کیے تھے, اور اس میں ہم لوگ ضمائر کو دیکھ چکے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رف کے ضمائر جیسے ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, اور انا, نحن, یہ حالت رف کے ضمائر تھے. اور یہ سبجیکٹو ہوتے ہیں. جب آپ کسی بھی سینٹینس میں کوئی سبجیکٹو ضمیر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے استعمال کرتے ہیں, ان ضمائر میں سے. اور دوسرا ہمارا جو ٹیبل ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہمارا حالت نصب اور حالت جر کے ضمائر کا تھا, جس میں ہم نے دیکھا تھا ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, تھا, کما, کم, کھی, کما, کن, اور یا, نا. یہ جو ضمائر کا ٹیبل تھا یہ ہمارا حالت نصب اور حالت جر میں, یعنی جب ہم اعرابی حالت میں نصب یا جر کے کانٹیکسٹ میں کسی بھی ضمیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں. और ये जो अभी मैंने दमायर आपके सामने पढ़े, ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा किसी भी इसम के साथ जुड़ के आएंगे, या किसी फेल के साथ या किसी हर्फ के साथ। तो ये कभी भी अकेले नहीं आते। जो हमें हालत रफ के जो हमारे दमायर है, हुआ हुमा हुन्ना या हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, ये वाले जो दमायर का टेबल है, ये सेपरेट आता है, अकेला आता है। लेकिन जो हमारे हालत नसब और हालत जर के दमायर अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाए, ये सब हमारे किसी फेल इसम या हर्फ के साथ अटैच होके आते हैं, ठीक। और ये जो हमारे दमायर हैं, ये ऑब्जेक्टिव दमायर हैं। तो अब चूंकि हमें मुदौफ इलेह के तौर पर जो दमायर इस्तेमाल हो के हम जिनको इस्तेमाल करना सीखेंगे भी आगे अपनी मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें चूंकि हमें मुदौफ इलेह में दमायर चाहिए, तो मुदौफ इलेह की हमने एक शर्त पढ़ी थी कि वो हमेशा हालत जर में होता है। तो जो सेकंड टेबल है, हालत नसब और हालत जर वाला, यानी ऑब्जेक्टिव दमायर वाला, वो वाला हमने अभी जो हमें यानी जरूरत है, वो हमारा हालत नसब और हालत जर वाला जो टेबल है, वही हमें जरूरत है, क्योंकि हमें हालत जर के दमायर चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को सब ये वो चीजें जो हमने सब पढ़ी हुई हैं पिछली क्लासेस में। इसमें आपको अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है या किसी का कोई सवाल करना है किसी चीज से रिलेटेड, वरना फिर हम जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आए और हम उसको स्टार्ट करें। अब इसमें इन दमायर का इस्तेमाल हमारा मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में, वो अब हमारा यानी नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि हमें पता चल गया दमायर हमने कौन से इस्तेमाल करने, और अब हमने उनका इस्तेमाल अपनी मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में करना है। जैसे हम मुरकबे इजाफी में हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी हामिद का घर, तो अगर हम इसी को दमीर के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो उसका घर, उसका घर, इसमें हम हमारे पास जैसे हमने ये चीज देखी थी कि स्विच करते हैं हम, यानी घर जो है वो अरेबिक कंस्ट्रक्शन में पहले आएगा और उसका जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो इसमें हमारे पास जो बईत है उसको बईतु करके हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, और उसका की जो दमीर है ये चूंकि अब सिंगुलर मुजक्कर की है और वाइब में आ रही है, तो इसलिए हम जो वाहिद मुजक्कर वाइब की दमीर है अपने टेबल में से वो हम चूज करेंगे, और वो हमारे पास हु की दमीर है। तो बई टू हु, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनेगी उसका घर की, बई टू हु। अब इसमें हमारे पास जो बईत है वो दम्मा के साथ आएगा। हल्का एराब हमने देखा, इसका हमने किया क्योंकि अलिफ लाम के बगैर हम करेंगे, और हल्का एराब यानी एक जो हरका है वो इस्तेमाल करनी है हमने मुदाफ में। तो बई टू हु, ये हमारी उसका घर की कंस्ट्रक्शन हुई। तो अगर हम बाकी सारे जो हमारे दमायर हैं उनमें इस बईत के वर्ड को ही लेके रोटेट करें, जैसे वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर हमने यूज की अभी, तो अगर हम तस्निया मुजक्कर गायब की दमीर को इस्तेमाल करें तो बई तू हुमा, सिर्फ हमने दमीर आखिर में चेंज करनी है। फिर अगर हम जमा की दमीर इस्तेमाल करें तो बई तू हुम, फिर इसी तरीके से वाहिद मोनस गायब की दमीर अगर बईत के साथ इस्तेमाल करें तो बई तू हा, तस्निया मुनस गायब की अगर दमीर इस्तेमाल करें तो बई तू हुमा, और जमा मुनस गायब की दमीर इस्तेमाल करें तो बई तू हुन्ना। बई तू हुमा, बई तू हुम, ये हमारे पास मुजक्कर गायब के दमायर के साथ हमने जो बईत का इस्तेमाल किया, और अब अगर हम मौनस के साथ इस्तेमाल करें ये हमारी मोनस वाइब के साथ जो कमाए इस्तेमाल हुए बैत के वो इस तरीके के साथ होंगे. और अगर हम अब हाजिर के दमाए की तरफ आ जाएं, जैसे अगर हम इसको उर्दू में करें तुम्हारा घर मुजक्कर के लिए, या अगर किसी मोनस को हम कहते हैं तुम्हारा घर, उर्दू में तो खैर तुम्हारा घर लड़का लड़की इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अरेबिक में फिर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. जैसे अगर हम पहले हम मुजक्कर हाजिर के दमाए देखते हैं, बैतू का, हाँ जी एग्जैक्टली बैतू का ये वाहिद हो गया, फिर तस्निया में बैतुकुमा और बैतुकुम, ये हमारे पास हाजिर के दमाए के साथ हो गया. अब अगर हम मोनस हाजिर के दमाए के साथ हम देखें तो बैतुकुमा बैतुकी, अब इसमें हमारे पास हरा का डिफरेंस आ रहा है कि अगर हम वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बैतुका है, और अगर हम वाहिद मोनस हाजिर का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बैतुकी है. यानी का और की ये डिफरेंस आ रहा है इसमें एराब का. बैतुकुमा और बैतु ये हमारे पास अब हाजिर के जो मुजक्कर और मोनस के बमाए हैं उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन आ गई. अब हमारे पास जो लास्ट टेबल में हमारी रह गई है वो मुतकल्लिम के हैं, यानी मेरा घर या हमारा घर. इस कंस्ट्रक्शन को जब हम करेंगे मुरक्कबे इजाफी में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी अरबी क्या होगी कि मेरा घर में जैसे बैतू और फिर हमारे पास जो दमीर है मेरा की वो क्या है या मुतकल्लिम जिसे कहा जाता है. तो अब ये जो या मुतकल्लिम है इसकी एक डिमांड होती है कि ये जब भी कभी किसी इस्म या फेल या हर्फ के साथ आती है तो इसकी ये डिमांड होती है कि भाई जो इससे पिछले वाला इस्म है फेल है या हर्फ है वो हमेशा कसरा के साथ आए. ये इस या मुतकल्लिम की डिमांड है. अब इस पॉइंट को आप अपने पास लिख लें कि जो हमारे पास याए मुतकल्लिम है वो हमेशा ये चाहती है कि उससे जो उसके साथ जो भी अटैच इस्म फेल या हर्फ आ रहा है वो कसरा के साथ आए. तो हम इसको चाहे हालत रफ में होगा, चाहे हालत नसब में होगा और चाहे हालत जर में होगा, हम इससे बिफोर जो इस्म है उसको हम कसरा ही देंगे. यानी बैती के साथ हम इसको लिखेंगे और ता की ता पे कसरा होगी बैती. लेकिन फेल और हर्फ में हमेशा कसरा नहीं होती. यानी फेल के साथ अगर ये याए मुतकल्लिम आ रहा है या हर्फ के साथ ये याए मुतकल्लिम आ रहा है तो हमेशा फेल और हर्फ कसरा कबूल नहीं करते. समटाइम्स करते हैं समटाइम्स नहीं करते. वो जब हमारा फेल और हर्फ का इंशाल्लाह टॉपिक आएगा तो उसमें फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन इस्म जो है वो इसकी बात मान लेता है याए मुतकल्लिम की और हमेशा इस्म कसरा के साथ आता है. तो अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि याए मुतकल्लिम आप जब भी मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हालत रफ है, चाहे वो हालत जर है और चाहे वो हालत नसब है, इस्म हमेशा कसरा के साथ आएगा. जैसे मेरी किताब अगर मैं कहूँ तो किताबी, उसमें ये हालत रफ, हालत जर और हालत नसब तीनों के कंस्ट्रक्शन में किताबी ही आएगा. वो फिर हमें जब किसी भी जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस जुमले के कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर किताबी की असल में कौन सी अराबी हालत है. ये हमारा याए मुतकल्लिम का एक्सप्लेनेशन होगी कि वो हमेशा कसरा के साथ आएगा. और फिर अगर हम मुसन्ना और जमा के लिए हमने देखा था कि एक ही दमीर इस्तेमाल होती है ना की, तो बैतु ना. अब यहाँ पे हमारे पास ता दम्मा के साथ इस्तेमाल होगा بیتنا. یہ ہمارے مرکب اضافی میں جتنے تمام ضمائر ہیں وہ حالت رفع کے اندر ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہوں گے. اب جیسے یا متکلم کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی کہ یا متکلم ہمیشہ اس سے جو بفور اسم یعنی اس کے ساتھ اٹیچڈ جو بھی اسم آتا ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہو کی ضمیر سب سے پہلی والی اس کی بھی کچھ رائٹنگ کے طریقے ہیں یعنی ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہیں. تو آپ واحد مذکر غائب کا ایک ٹاپک کی طرح لکھ لیں اور ہو ضمیر اس کے ساتھ ہوگی کہ اس کو ہم نے کچھ اس کے لکھنے کے طریقے ہیں کہ بعض دفعہ اس پہ کسرہ ہوتی ہے صرف, بعض دفعہ الٹی پیش ہوتی ہے, بعض دفعہ کھڑی زیر ہوتی ہے, تو وہ کس حساب سے اس کی حرکات آتی ہیں. تو جو ہمارے پاس سب سے پہلی حالت ہے یعنی ہو کی سب سے پہلی حالت میں کیا ہوگا کہ اگر تو اس ہا ضمیر سے پہلے واحد مذکر غائب کی ہا اب ضمیر سے پہلے اگر ہمارے پاس ضمہ یا فتحہ ہو تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھی جائے گی. کن دو صورتوں میں؟ جب ضمہ یا فتحہ ہوگی تو جو ہو ضمیر ہے وہ الٹی پیش کے ساتھ لکھی جائے گی. یہ ہماری پہلی حالت ہوگی, پہلی کنڈیشن. سیکنڈ ون کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ہا جو ہماری یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہو اس سے بفور اگر ہمارے پاس کسرہ آ رہی ہے, یہ ابھی آپ صرف پوائنٹس لکھ لیں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو جب ایگزامپلز دوں گی تو پھر آپ کو یہ اور زیادہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اگر آپ کی واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے آپ کو کسرہ مل رہی ہے تو پھر یہ ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ آئے گی. پھر تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور یا ساکن ہے تو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے جو حرکت ہے وہ صرف کسرہ کے ساتھ ہوگی. اور فورتھ ون کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس سے بفور ہمارے پاس ساکن یا الف ہو تو ہماری جو یہ ضمیر ہے یہ صرف ضمہ کے ساتھ آئے گی. میں یہ ساری چاروں کنڈیشنز واپس ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور ضمہ یا فتحہ ہو تو ہم اس ہو ضمیر کو الٹی پیش کے ساتھ لکھیں گے. پہلی کنڈیشن تھی. سیکنڈ کنڈیشن میں کیا ہے کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی ضمیر کے سے بفور ہمیں کسرہ مل جاتی ہے تو اس صورت میں ہم نے اس ہو ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھنا ہے. اور تھرڈ کنڈیشن ہے کہ اگر ہماری واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے اس سے بفور ہمیں یا ساکن مل جاتی ہے تو پھر ہم نے اس ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ لکھنا ہے. اور فورتھ ون کنڈیشن ہے کہ اگر ہمیں اس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور ساکن یا الف ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو ہم ہو ضمیر کو ضمہ کے ساتھ بولیں گے اور لکھیں گے. یہ ہماری چار کنڈیشنز ہیں جو واحد مذکر غائب کے بولنے یا رائٹنگ سٹائل سے یہ ریلیٹڈ ہیں. اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگر واحد مذکر غائب سے بفور یا ساکن ملے ہمیں تو پھر ہم واحد مذکر غائب کو صرف کسرہ کے ساتھ لکھیں گے یا پڑھیں گے. اب جیسے آپ لوگوں نے تجوید میں پڑھا ہوگا इस चीज को कि अगर आपके पास हु यानी उल्टी पेश के साथ आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा करते हैं, दो हरकत के बराबर। और अगर आपके पास ही जमीर आ रही है खड़ी जेर के साथ तो आप उसको टू हरका लेंथ देंगे। और इसी तरीके से अगर आपकी जो ये यानी आप जब बोलेंगे या कुरान मजीद पढ़ते हुए आपके सामने यही चार कंडीशंस आएंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने हु को दो हरकत तक कब लेके जाना है और वन हरका कब टाइम देना है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर से बिफोर या साकिन आ जाए तो आपने जो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है उसको कसरा के साथ लिखना या पढ़ना है। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर से बिफोर आपको सुकून या अलिफ मिलता है तो उस सूरत में जो दमीर है वो सिर्फ दम्मा के साथ होगी। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो जब आप एग्जाम्पल्स इन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ लिखेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। इसमें जैसे हमने पहली कंडीशन देखी कि अगर वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर से बिफोर फतहा या दम्मा मिले तो इसमें जैसे हमने बईद को अभी पूरे टेबल में रोटेट किया था, हम उसी को देखते हैं कि बईद को अगर हम दम्मा या फतहा के साथ यानी ता जो है उसकी वो दम्मा या फतहा के साथ हम पढ़ेंगे तो बईद हु उल्टी पेश के साथ और बईता हु उल्टी पेश के साथ, ये दोनों होंगे हमारे पास। बईतु हु और बईता हु, अब इसमें हरकात डालना कुछ थोड़ा ट्रिकी है तो आप लोग को देखने के ता को पहले आप गम्मा के साथ और फिर ता को फत्था के साथ अगर आप लिखेंगे तो हम इस हा गमीर हु जो गमीर है इसको हम उल्टी पेश के साथ करेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन में हमारे पास था कि वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर से बिफोर कसरा, उसमें जैसे अगर हम बईत की ही एग्जाम्पल ले लें तो बईत को अगर हम ता को कसरा के साथ करें तो बईती ही, ये अब हमारे पास जो ही है वो खड़ी जेर के साथ है। फिर हमारा जो थर्ड कंडीशन इसमें आ रही है वो क्या है कि वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर से बिफोर या साकिन हमारे पास हो तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है फी ही की। ये जो सूरतुल बकरा की स्टार्टिंग आयाज में आता है कि ला रैब फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, अब यहाँ पे आप देखें कि फी ही हुदल लिल यहाँ पे आपको सिर्फ ही कसरा के साथ मिलता है, आपने उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना तो यहाँ पे क्योंकि हमें या साकिन हु गमीर से बिफोर हमें या साकिन मिल रही है इसलिए हम उसे सिर्फ कसरा के साथ लिखेंगे फी ही। ये हमारे थर्ड कंक्लूजन की एग्जाम्पल होगी। अब फोर्थ में जैसे हमने देखा है कि साकिन या अलिफ अगर हमारे पास वाहिद मुजक्कर गायब की दमीर से पहले आ जाए तो उस सूरत में हम जो दमीर है उसको सिर्फ दम्मा के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास मिनहू एक मिसाल है जिसमें मिनहू में नून साकिन है और नून साकिन के बाद हमारे पास दमीर आ रही है, और अगर हम अलिफ की एग्जाम्पल के साथ देखें तो आई ना हूं यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो हमारे पास दमीर है वो सिर्फ दम्मा के साथ है क्योंकि एक मिनहू में हमारे पास नून साकिन है और आई ना हूं में दमीर से बिफोर हमें अलिफ मिल रहा है। ये मैं इंशाल्लाह आपको टेबल सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे क्लास के बाद ताकि अगर कोई किसी को मिसालों के साथ ताकि कोई अगर किसी के से कुछ रह गया हो तो वो उसको नोट कर ले। ठीक है, ये अब हमारी जो डिटेल्स हो गई ये वाहिद मुजक्कर गायब के साथ हो गई। इसी तरह जो हमारी तस्निया और जमा की कुछ यानी एराब के अंदर या बोलने और लिखने में कुछ पॉइंट्स हैं, वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने वाहिद मुज़क्कर गायब को देखा, तो तस्निया और जमा यानी हुमा और हुम, और इसी तरह जो मुअन्नस के दोनों तस्निया और जमा के दमायरे हुमा और हुन्ना, ये जो चार दमाए हैं इनको हम देखते हैं कि ये अगर इनसे जो यानी हरकात का थोड़ा सा डिफरेंस इनमें आ जाता है, हुमा हुन और हुमा हुन्ना, इन चार दमाए को हम अभी डिस्कस करेंगे। अब्दुल्ला जो है उसमें कोई दमीर नहीं इस्तेमाल होगी। जब आपके पास दमीर इस्तेमाल होगी तो फिर क्योंकि अभी हम दमीर पे टॉपिक पढ़ रहे हैं, दमायर अगर इस्तेमाल होंगे तो फिर उसमें अल्लाह अल्लाह के ऊपर हम कसरा यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि वो मुदाफ इलेह की उसमें आ रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको कसरा के साथ करेंगे। मुदाफ इलेह की हमारे पास कंडीशन है कि वो हमेशा मकसूर होता है, कसरा के साथ होता है, अब्दुल्ला ही। ठीक, अब हम जो हमारे दमायर हैं हुमा हुम और हुन्ना, ये तीन दमायर हैं जिनको हमने राइटिंग के हिसाब से या पढ़ने में देखना है कि उनमें क्या क्या चेंजिंग होती है। अगर तो इन तीनों दमाएँ हुमा हुम और हुन्ना, इन तीनों से बिफोर हमें कसरा या साकिन मिले तो फिर हम इनको हिमा हिम और हिन्ना यानी जो तीनों हाल हैं इनके वो हम कसरा के साथ पढ़ेंगे। वैसे तो टेबल में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम इनको दम्मा के साथ पढ़ते हैं, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, लेकिन ये जो तीन दमाएँ हैं मुसन्ना और जमा के हुमा हुम और हुन्ना, ये कसरा के साथ इनकी हा कब आती है? जब हमारे पास इन तीनों दमीरों से पहले कसरा या साकिन आ जाए तो फिर हम इन तीनों रमाय को कैसे पढ़ेंगे? हिमा हिम और हिन्ना। अब अगर हम किताब को लेके चलें, ये सॉरी जो बैत हमने जिस बैत के साथ हमने हालत रफ में तमाम कंस्ट्रक्शंस की थी, अगर हम उस बैत ही को कसरा के साथ लेके जाएं तो यानी हालत जर की जो हमारी कंडीशन है उसको देखते हुए, बैत बैत को अगर हम अब हम बैत की हालत रख नहीं रखते, हम हालत जर रखते हैं, तो कसरा के साथ हम जब इसकी कंस्ट्रक्शंस करेंगे दमाए के साथ, सबसे पहले हम अगर वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर को देखें तो बैती ही, यहाँ पे हमने अभी जो रूल पढ़ा था वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसमें हमने ये देखा था कि अगर कसरा होगी तो हम खड़ी ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे, बैती ही। अब अगर हम मुसन्ना के सीगे पे जाएं तो बैती ही माँ, जब बैत कसरा के साथ या हालत जर में आया है हमारे पास तो हाँ भी कसरा के साथ होगा, बैती ही माँ और बैती हिम। इसी तरीके से मुअन्नस मुअन्नस का जो वाहिद का सीगा है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बैतिहा क्योंकि उसमें एराब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सॉरी हरकात में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और मुसन्ना का जो सीगा है या जमा का, उसमें हमारे पास बैती हिमा और बैती हिन, ये अगर हम हालत जर में एराबी हालत अगर हमारी मुदाफ की मजरूर होगी तो उसमें हमारे पास हिमा, हिम और हिन, इन तीनों को हमने इस तरीके के साथ लिखना और पढ़ना है। हाँ जी, आपकी किताब में मेरा ख्याल है ये सब चीजें मौजूद हैं जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस थी कि अगर हुमा, हुम और हुन्ना से बिफोर कसरा या साकिना है, तो कसरा की एग्जांपल्स में मैंने आपको बैत के साथ समझा दिया। तो इसमें जैसे अगर हुम से पहले या साकिन आ जाए, इसकी सूरत अल-फातिहा में हमें एक मिसाल मिलती है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम। तो यहाँ पर अलैहिम जो है वो हा कसरा के साथ आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास या साकिन है हा से पहले, अलैहिम या अलैहिन्ना होगा या अलैहिमा, यानी तीनों दमायर को अगर हम आला या साकिन बिफोर रख के देखें तो अलैहिम, अलैहिमा, अलैहिन्ना, ये इस तरीके के साथ ही होंगे। अगर कोई चीज समझ ना आई हो किसी स्टूडेंट को तो वो पूछ दें। ठीक है, अब हम कुरान मजीद की कुछ मिसालें देख लेते हैं। एक मिसाल हमें मिलती है 30th पारे में, जो पहली सूरत है सूरत नबा, इसमें हमें मिलती है ضمیر کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ، یہ جو کنڈیشنز ہیں ضمائر کی یہ میں آپ کو لکھ کے سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ کے اوپر ٹیبل۔ یہاں پہ اصل میں رائٹنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ اعراب کا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گی واٹس ایپ کے اوپر، ہو ضمیر کو بھی اور ہما، ہم اور ہونا کو بھی، ان تمام دمائر کو میں آپ کو سینڈ انشاءاللہ کر دوں گی۔ تو کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم جو دمائر کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں مرکب اضافی میں، جیسے سورت النبا میں ایک مثال آتی ہے یدا ہوگی، اس کے دونوں ہاتھ، یہ کنسٹرکشن ہمیں ملتی ہے سورت النبا میں، یوم یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہاں پہ یدا دونوں ہاتھ، یہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یدانی کا ہلکا اعراب کرنے کے لیے ہم نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تسنیہ اور جمع ان دونوں کے نونز ہم ڈراپ کر دیتے ہیں جب ہم نے ان کا اعراب ہلکا کرنا ہو، مضاف کی حالت میں جب ہمارے پاس تسنیہ یا جمع آتے ہیں اس صورت میں، تو یدانی سے نون ڈراپ ہو گیا یدا، اور ہو ضمیر جب ہمارے پاس آئے گی یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور جب ہمارے پاس الف ہوگا تو ہم نے اس کو صرف ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یدا ہو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ واحد مذکر غائب کے ساتھ ہمیں ایک مثال ملتی ہے قرآن مجید میں۔ اور اسی طرح ایک مثال جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کی اگزامپلز میں بھی بتائی، آئینہ ہو، یہ مثال ہم لوگوں کو ملتی ہے ایک حدیث میں جس میں اللہ تعالیٰ نے سات لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو اس میں ایک شخص ہے ورجل ذکر اللہ خالیا فصابت آئینہ ہو، تو یہاں پر آئینہ ہو اس کی دونوں آنکھیں، آئینان یہ بھی تسنیہ میں آ رہا ہے تو اس کا ہم نے اعراب ہلکا کیا مضاف کی وجہ سے، نون کو ہم نے ڈراپ کیا، اور جو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے उसको हमने सिर्फ गम्मा के साथ लिखना है, इसलिए क्योंकि वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले हमें अलिफ मिल रहा है। यदाहु और आई नाहु, इसमें जो हमारे पास दमायर है ये हमने सिर्फ गम्मा के साथ लिखने, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास अलिफ बिफोर है दमीर से। ठीक, अब हम कुरान मजीद को खोल के उसमें से कुछ तदबीर करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, दमायर को देखते हैं कि अस्मा के साथ आए जब वो मुरकबे इजाफी हुए। अब आपने यहाँ पर जो हम पोर्शन को देखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ इस्म को कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब इस्म के साथ दमीर होगी तो वो मुरकबे इजाफी होगा। अगर वो फेल के साथ आ रही है तो वो मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में नहीं है, और अगर वो हर्फ के साथ आ रही है तो वो मुरकबे इजाफी के अंदर नहीं आ रही है। तो अभी जो हम जितनी एग्जाम्पल्स देखेंगे वो हमने उसमें दमीर के साथ हमने देखना है कि इस्म का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसमें आप लोग सूरत निसा को स्टार्ट से देख लें, सूरत निसा फोर्थ पारा में है, ओपन कर दें सब लोग अपने कुरान ताकि मैं इसको पढ़ के फिर जहां जहां हमारे पास इस्म के साथ ज़मीर इस्तेमाल हुई है हम उसको चेक कर लेते हैं। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ربكم, यहाँ पे हमारे पास ये भी कंस्ट्रक्शन है कि इस्तेमाल हो रही है मुरकब इजाफी की, रब इस्म है और यहाँ पर ये हालत जो है वो हालत नसब है कि ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها زوجها, ये हमारे पास मुरकब इजाफी बन रहा है, ज़ौज इस्म है और उसके साथ हाफ़ ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا, अब आप में से कोई सेकंड आया में से देखें कि कोई हमारे पास मुरकब इजाफी की कंस्ट्रक्शन है तो उसको जज करें आप लोग। जी बिल्कुल, अमवालहुम अमवालहुम और अमवालिकुम ये जो है दोनों कंस्ट्रक्शन में आया है इस्तेमाल हुए हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कोई मिलता है आप लोगों को? नेक्स्ट आया थर्ड को आप देखें, इसमें कोई है? खिस्तुम में इसम नहीं इस्तेमाल होगा, इसलिए मुरकबे इजाफी नहीं है। जी अईमानुकुम, एग्जैक्टली अईमानुकुम में हमारे पास इसम इस्तेमाल हो रहा है और ये हालत रफ है इसकी। ये जो वर्ड है इनाहु इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। सदुकात हिन्ना, अब यहाँ पे आप देखें कि आपको हिन्ना की कंस्ट्रक्शन मिल रही है कसरा के साथ, कि हमने जैसे अभी अपने रूल में पढ़ा था कि जब हमारे पास या साकिन या कसरा होती या साकिन या कसरा होती है हुमा होम और होन्ना इन तीनों से बिफोर जब हमारे पास या साकिन या कसरा आ जाती है तो फिर हमारी ये तीनों दमाए हिमा हिम और हिन्ना बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें उसकी एक मिसाल भी मिलेगी फदोकौती हिन्ना। जी फदोकौती हिन्ना के बाद अगेन हमारे पास अमवालुकुम की एक आ रही है। वर्जुकुहुम, ये मेरा ख्याल है किसी ने लिखा है, तो वर्जुकुहुम में ये हमारे पास तेल है, ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। हाँ जी, ये जो हिन्ना है ये कसरा की वजह से है, ता की कसरा है जिसकी वजह से हा के ऊपर भी कसरा आ गई है। लखुम भी जो है, लखुम फिर हमारे पास हुरूफ की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ये मुरकबे इजाफी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अलैहिम भी हर्फ है जो दमीर के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी मुरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में वो आएंगे जो कि अस्मा के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे अम्बुआलहुम अम्बुआलिहिम ये वाली कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रही हैं। मिन खल्फिहिम ये आया नंबर 9 में आ रहा है, खल्फिहिम ये हमारे पास मुदौक मुदौक के लिए थी मिसाल आ रही है। दफातुम दफातुम भी फेल है, फेल के साथ गमीर आ रही है, मुरक्कबे इज़ाफ़ी नहीं होगा। बिल्लाही 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 में हर्फ इस्तेमाल हो रहा है। बुतून हिम आया नंबर 10, बुतून इस्म है, पेट के लिए इस्तेमाल होता है। औलादिकुम आया नंबर 11 में आ रहा है, आबाउकुम हाँ जी इसमें भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये मुदौफ मुदौफ़िले है, मुरक्कबे इज़ाफ़ी। ठीक है, इतना हम बात करते हैं इसके साथ। अपनी कुरान मजीद की कंस्ट्रक्शंस को ठीक है, अब हम कुछ और मिसालें देखते हैं जो कि हमारे पास आ रही हैं। मुरक्कबे इजाफी ही की कुछ मिसालों को हम देखते हैं, यानी अभी तो हमने कुरान मजीद में देखा, लेकिन अब हम देखते हैं इसको कि कुछ मिसालें हम खुद कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं जो हमारी गमायर के साथ हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली कंस्ट्रक्शन उसका भाई। अब इसमें आप लोगों ने ट्राई करना है, जैसे भाई के लिए अखुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर इसमें जो हमने रूल पढ़ा था रमज़ान से पहले अस्माए खमसा के रूल्स में से, कि यहाँ पे हमने गम्मा कसरा या फतहा का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वाओ अलिफ या को इस्तेमाल करके हमने इस कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना है। उसका भाई, भाई के लिए अखुन का लफ्ज है। अब हम अगर अख को हालत रफ में रखते हुए उसके साथ हु की दमीर इस्तेमाल करेंगे तो अखू हु एग्जैक्टली, यानी हमने इसको वाव के साथ इसकी गम्मा शो करनी है, हालत रफ शो करनी है, अखू हु। ठीक है, उसका भाई। इसी तरीके से उसकी माँ, ये भी हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर आ रही है, उम्मुहू। इसके बाद हम देखें उसका बाप। इस कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास अब अस्माए खमसा में से आ रहा है, तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अबूहू। अब यहाँ पे अखूहू भी हमारे पास दम्मा के साथ आ रहा है, और अबूहू में जो दमीर है वाहिद मुज़क्कर गायब की, वो हमारे पास दम्मा के साथ आ रही है। उसकी क्या हमारे पास उससे बिफोर सुकून आ रहा है, और ये हमारी फोर्थ कंडीशन है कि अगर हमें वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर से पहले सुकून मिलेगा तो हमने उसको सिर्फ दम्मा के साथ लिखना है। फिर उसका साथी, साथी की हमारे पास जो अरेबिक है वो है साहिबतु, अगर मुअन्नस साथी रखी जाए। एग्जैक्टली, साहिबती। और इसके साथ अगर हम दमीर इस्तेमाल करें हु की साहिबतु के साथ, साहिबतु हु की दमीर आएगी, ही की दमीर नहीं होगी, क्योंकि ही की दमीर हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास कसरा की कंस्ट्रक्शन होगी। तो जब हमारे पास फतहा या यानी साहिबा जो है हमारे पास अगर हालत रफ या हालत नसब में होगा, तो उसके साथ जो हमारे पास दमीर होगी वाहिद मुज़क्कर गायब की वो हु होगी। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था। और अगर कसरा आ जाती है साहिबा पे तो फिर हमारे पास ही की दमीर उसके साथ इस्तेमाल होगी, यानी साहिबतुहु, साहिबतहु, और कसरा के साथ साहिबतीहु हालत जर में। ठीक, इसके बाद उसके बेटे, बेटों को अगर हम प्लूरल रखें और फिर प्लूरल में बनूना हमारे पास इबन की जो जमा है वो जमा मुकसर इस्तेमाल होती है बनूना, और इसमें फिर हमने नून को ड्रॉप करना है हल्का इराब करते हुए बनूहू। बिल्कुल, फिर बनूहू को, ये हमारे पास बनूहू जो है ये हालत रफ में है, अगर हम इसी को हालत जर में कर दें या हालत नसब में कर दें तो ये किस तरीके के साथ बोला जाएगा बनूहू की कंस्ट्रक्शन को? बनूहू, बिल्कुल या के साथ, क्योंकि इसमें जैसे हम वाव आया है दम्मा को जो शो कर रहे हैं तो फिर या होगा, और इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी अखूहू, अखूहू को अगर हम हालत नसब में करें तो वो किस तरीके के साथ होगी? अखूहू की कंस्ट्रक्शन हालत नसब में इसमें हमारे पास वाव नहीं इस्तेमाल होगा, इसमें हमारे पास अलिफ इस्तेमाल होगा अखाहु, अखाहु। ये हमारे अस्माए खमसा हैं जिनको हमने देखा था कि उनकी इराबी हालात हमने वाव, अलिफ और या इन तीनों के साथ हमने चेंज करनी है, कि अगर हालत रफ है तो वाव का इस्तेमाल होगा, अगर हालत नसब है तो अलिफ का इस्तेमाल होगा, और अगर हालत जर है तो या का इस्तेमाल होगा। अखी ही जो है वो हालत जर है, हालत नसब इसकी अखाहू है अलिफ के साथ, अखूहू हालत रफ, अखाहू हालत नसब, और अखी ही हालत जर। ये जो वाव, अलिफ और या है ये इनकी हालात को हालत राबी हालत को जज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे सूरा अबस में आती है, ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो भी हमने बनाई हैं ये सब उसकी आयात में आती हैं, कि यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। वैसा है कि अगर हम इस सूरत को खोल लें कुरान मजीद में, सूरह अबस को, तो इसमें जो हमारे पास हमने अभी रूल पढ़ा है वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर का, उसको भी हमें थोड़ा सा قرآن مجید میں دیکھ کے اس کے اعراب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ عبس آیا نمبر 34 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو آپ سب اوپن کر دیں. یوم یفر المرء من اخیہ, اخیہ میں ہمارے پاس یا ساکن ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس یا ساکن ہو تو ہم ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, من اخیہ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کے ساتھ صرف کسرہ ہے. اور پھر وامیہ میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور کسرہ آ رہی ہے, یعنی میں میم پہ کسرہ ہے اور پھر اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ ہمارے پاس اگر ضمیر سے بفور کسرہ ہوگی تو ہم ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھیں گے, امیہی. تھوڑا سا آپ آیا نمبر 34 ہے سورہ عبس کی 30th پارہ, امیہی. اب اس ضمیر کو آپ نے تھوڑا سا سٹریچ کرنا ہے, یہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے. ابھی ہی میں ہمارے پاس یا ساکن ہے ضمیر سے بفور, تو یہ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشن تھی کہ ہم صرف کسرہ کے ساتھ ایک ہرا کا اس کو سٹریچ کریں گے, وہ ابھی ہی. پھر اس طریقے سے جو نیکسٹ ہمارے پاس کنسٹرکشن آ رہی ہے وہ صاحبتی ہی, اس میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور کسرہ ہے, تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن کے اندر آ رہا ہے کہ کسرہ اگر ہوگی تو ہم نے کھڑی زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے, وہ صاحبتی ہی و بنی ہی. بنی ہی میں ہمارے پاس ضمیر سے بفور یا ہے یا ساکن, اور یہ ہمارے پاس تھرڈ کنڈیشن میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یا ساکن ہوگی تو ہم نے ضمیر کو صرف کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ساکن کے ساتھ ہمارے پاس ضمیر پہ صرف کسرہ آتی ہے, بنی ہی. ٹھیک ہے, یہ اب جو ہمارے ضمائر ہو گئے اس کی ہم نے کنسٹرکشنس کی, یعنی سمپل کنسٹرکشنس کی. یہ ایک اسم کے ساتھ ہم نے ضمیر کو دیکھا, تو اس کو اگر ہم اسی طریقے سے کچھ زیادہ اسماء کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ضمیر کو, ایک کنسٹرکشن ہم ویسی کر لیتے ہیں جو پیچیدہ, جیسے مرکب اضافی ہم نے دیکھے تھے جس میں دو اسماء سے زیادہ ہم استعمال کر رہے تھے, تو یہاں پہ بھی ہم ایک ضمیر اور اس کے ساتھ ایک اسم سے زیادہ اسماء ہوں گے. ایک کنسٹرکشن میں بولتی ہوں جیسے تیرے رب کی رحمت کا ذکر. اب اس میں جو ہماری ترتیب ہوگی پیچیدہ مرکب اضافی کے لیے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس سینٹینس کو الٹا جب پڑھیں گے, یعنی آخر سے اس کے اسماء کی ترتیب جس طریقے سے بن رہی ہے ویسے آپ نے اس کی بنانی ہے. جیسے تیرے رب کی رحمت کا ذکر, اس میں ذکر ہمارے پاس سب سے آخر میں آ رہا ہے, تو عربی جو کنسٹرکشن ہوگی اس میں ذکر سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. پھر اردو کنسٹرکشن میں جیسے رحمت ہماری تھرڈ نمبر پہ آ رہی ہے, تو عربی کنسٹرکشن میں رحمت سیکنڈ پہ چلی جائے گی, اور رب جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ اردو کنسٹرکشن میں ہے, تو یہ عربی کنسٹرکشن میں تھرڈ نمبر پہ چلا جائے گا رب. اور تیرا, یہ ہمارے پاس ضمیر استعمال ہو رہی ہے, تو یہ ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں چلی جائے گی عربی کنسٹرکشن میں. ذکرون, رحمتون, بالکل, ربون اور انتا, بالکل. اب انتا کی جو ضمیر ہے وہ حالت رف کی ہے, تو ہم نے جو ضمیر استعمال کرنی ہے وہ کا کی ضمیر یوز کرنی ہے اس میں, حالت نصب اور حالت جر کی. جی بالکل, تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ذکر ہے وہ ہلکے اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے ہم اس کا, ذکرو. پھر رحمہ اور رب, یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ دونوں اس کی, ان کی یعنی حالتیں بن رہی ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ہلکا اعراب بھی رکھنا ہے اور ہم نے مجرور بھی رکھنا ہے, رحمت کو بھی اور رب کو بھی. تو رحمتی, ربی اور کا کنسٹرکشن جو ہے وہ مضاف الیہ میں آ رہی ہے, تو ربی کا. ये चूंकि हमारी जो दमाएं हैं ये मबनी होते हैं, तो इसलिए इनका इराब उस तरीके से नहीं बदला जाएगा। तो ये जो हमारे पास तेरे रब की रहमत का जिक्र है, इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास बन रही है ज़िक्रु रहमती रब्बिका, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बन रही है दमीर के साथ पेचीदा मुरकबे इजाफी की। और ये मिसाल हमें मिलती है सूरह मरियम में, सूरह मरियम की सेकंड आया है मेरा ख्याल है, ज़िक्रु रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। यहाँ तक जो हमारा दमायर के साथ मुरकबे इजाफी का टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया कि मुरकबे इजाफी जब दमीर के साथ मिलता है इसमें असल में पॉइंट कोई नहीं है। ये हमने सिर्फ एक से ज्यादा अस्मा इस्तेमाल किए हैं दमीर के साथ। जैसे हमने इससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस की थी जब मुरकबे इजाफी को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने दो अस्मा से ज्यादा अस्मा की कंस्ट्रक्शन को देखा था। तो यहाँ पर हमने एक मिसाल देखी है दमीर के साथ कुछ ज्यादा अस्मा की, जैसे तेरे रब की रहमत का जिक्र, ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास जिसको हमने अरबी में बनाना है। तो इसमें तेरे रब की रहमत का जिक्र, तो जिक्र हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन अरबी में करेंगे। रहमत सेकेंड नंबर पे, रब थर्ड नंबर पे, और जो दमीर है वो सबसे लास्ट नंबर पे। तो इसमें हमारे पास जो जिक्र है वो मुदाफ है, उसमें हमने मुदाफ की शराइत पूरी करनी है। फिर रहमतु रब्बिक, रहमतुन और रब्बुन, ये दो जो हमारे पास अस्मा आ रहे हैं ये मुदाफ भी हैं और मुदाफ इलेह भी हैं। तो इन इन दोनों अस्मा के ऊपर हमने मुदाफ और मुदाफ इलेह दोनों की जो शुरूत है उनको हमने डालना है इनके ऊपर कि हल्का इराब होगा और हमारी जो दोनों अस्मा हैं वो मकसूर होंगे, कसरा के साथ होंगे। और फिर हमारे पास एंड में था दमीर है जो कि हमारी हालत जर की दमीर 13 के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम जब पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, ज़िक्रु रहमती रब्बी का, यहाँ पर रहमा और रब ये दोनों मुदाफ इलेह की वजह से मकसूर आ रहे हैं, कसरा के साथ आ रहे हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनती है ज़िक्रु रहमती रब्बी का। और ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास सूरत मरियम में भी इस्तेमाल हुई है, ज़िक्रु रहमती रब्बी का अब्दहु ज़करिया। कोई बात समझ ना आई हो कुछ रिपीट करवाना हो किसी ने। यहीं तक हम अपना लेसन रखते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.